ओम शांति। हम समय के प्रबंधन को देखते हुए शुरुआत ध्यान की अनुभूति से ही करते हैं। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे। मन सहज है और शांत है। चारों ओर शांति के प्रकंपन है। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। और इस शांति में अनुभव करेंगे कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। ये शरीर मेरा एक वस्त्र की तरह है। आंखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली और मुख द्वारा बोलने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति हूं। मैं शांतिपुंज, शांत स्वरूप आत्मा हूं। मस्तक के मध्य एक दिव्य प्रकाश अनुभव कीजिए। ये प्रकाश धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल रहा है। मैं प्रकाश पुंज, प्रकाश स्वरूप आत्मा हूं। अनुभव कीजिए कि चारों ओर सुनहरा लाल प्रकाश फैला हुआ है। और इस प्रकाश में वो परम ज्योति परमात्मा चमक रहे हैं। उनसे शांति की किरणें उतर उतर कर मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। परमात्मा, आप कितने मीठे हैं, कितने प्यारे हैं। आपने मेरे जीवन को धन्य धन्य बना दिया। मैं आत्मा आपकी ही थी, आपकी ही हूं और आपकी ही होकर के रहूंगी। आपका हाथ और साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। परमात्मा, किरणों के नीचे मैं आत्मा शांति की गहन अनुभूति की ओर जा रही हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। इस ज्ञान सरोवर के पवित्र वातावरण में ये 5 दिन ज्ञान की गंगा निरंतर प्रवाहित होती रहेगी और इस ज्ञान गंगा में स्नान कर आत्मा पवित्रता की, ज्ञान की, शांति की और शक्ति की अनुभूति करती रहेगी। मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा। आज प्रथम दिन, प्रथम सत्र ईश्वर के साथ का गहराई से अनुभव। इस भाव के साथ ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, सदा सफलता साथ हमारे हाथ में, उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। परमात्मा साथ का अनुभव करते हुए हम आज के सत्र को यानी ज्ञान चिंतन को प्रारंभ करते हैं। शांति शांति शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, आप सभी का ज्ञान सरोवर के प्रांगण में प्रथम दिन परमात्मा की ओर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विशेष आज का जो सत्र है उसका विषय है कि किस प्रकार हम अपने दैनिक जीवन में ध्यान और सकारात्मक चिंतन को अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान दें। हम सभी जानते हैं कि 24 घंटे में है ना, कई बार एक ही व्यक्ति को बहुत सारे कार्य आ जाते हैं। जो कार्य हम सोच के रखे रहते हैं वो तो ठीक है ना, लेकिन अचानक कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो फिर हम घबरा जाते हैं कि अरे आज वैसे ही बहुत सारे कार्य थे, उसमें भी ऊपर से ये भी कार्य आ गया, तो मैं इसको मैनेज कैसे करूं, है ना? कई बार ऐसा होता है और दिल की धड़कन बढ़ जाती है, होती क्योंकि हमने सोचा नहीं था कि जीवन में ये परिस्थिति आ जाएगी या अचानक ये कार्य आ जाएगा, लेकिन आ गया तो आपको उसको मैनेज तो करना ही पड़ेगा। तो कैसे मैनेज कर सकते हैं? हमारी आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी बहुत अच्छी बात बताती थी कि मैनेज द सेल्फ बिफोर मैनेजिंग अदर्स। अपने आप को मैनेज करने की कला होगी तो हम दूसरों को भी मैनेज कर लेंगे, लेकिन कई बार हम अपने आप को ही मैनेज नहीं कर पाते। ठीक है, अब देखिए, दूसरे को चेंज करने का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है। ठीक है, ठीक है, मेरे हाथ में मुझे ही चेंज करने का रिमोट कंट्रोल है। तो आप क्या चाहेंगे, दूसरे चेंज हो कि मैं चेंज हूं? वो चेंज होने वाले नहीं है। मान लीजिए हम कई बार सर्टिफिकेट भी दे देते हैं कि मैंने तो बहुत प्रयास कर लिया, वो चेंज नहीं हो सकते। जब मैंने ही सर्टिफिकेट दे दिया है कि वो चेंज होने वाले नहीं है, तो अब चेंज किसको करना पड़ेगा, खुद को या उन्हीं के साथ रहते हुए मुझे स्वयं को संभालना आना चाहिए। अगर उनके क्रोध का, उनकी ईर्ष्या का, द्वेष का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ गया, माना अब मैं और डिस्चार्ज होने वाली हूं, तो अपने आप को चार्ज करना चाहेंगे कि हमेशा डिस्चार्ज रहेंगे? हम कहने में तो कहेंगे कि हम चार्ज होना ही चाहते हैं, ठीक। लेकिन अब एक प्रश्न, क्रोध आते हैं यहां जो भी बैठे हैं उनको? जिसको बिल्कुल क्रोध नहीं आता वो हाथ उठा। आते हैं, अलग अलग रूप में आते हैं, कोई बाहर से व्यक्त नहीं करता तो अंदर का रहता है। फिर भी कहते हैं कि बाहर वाले तो एक प्रकार से ठीक भी है, अंदर में जिनको आता है ना, तो वो जब ज्वालामुखी फूटता है तो वो एकदम उनका अलग रूप हो जाता है ना। अच्छा, क्रोध करने से रिलेशन हमारे अच्छे हो जाते हैं कि बिगड़ जाते हैं? उस बिगड़े हुए संबंध को ठीक करना, उसमें फिर वक्त लगता है कि एक मिनट में बढ़िया संबंध हो जाता है? वक्त लगता है। उनकी बातों को हम भूल ही नहीं पाते हैं, ठीक? उन्होंने ऐसे क्यों बोला, ऐसे क्यों किया? एक सिंपल बात आपको बताती कि जब हम लोग माउंट आबू की यात्रा की ओर निकलते हैं तो हमारे साथ कभी 150 का ग्रुप, कभी 100 का, कभी 25 का, कभी 30 का, जैसे प्रोग्राम होते हैं। अब होता क्या है कि मान लीजिए मैंने रिजर्वेशन कराया 25 लोगों का या 100 लोगों का या 150 लोगों का। एक सिंपल बात बता रही हूं जो ज्यादातर होती ही है। अब जैसे हमारे साथ कुछ गांव वाले भी आते हैं, अब मान लीजिए टिकट के पैसे तो सबके एक जैसे ही लगे होंगे, अगर AC 2 में कराया, AC 3 में कराया, स्लीपर में कराया, इतने दूर से जनरल में तो कोई आता नहीं है। लेकिन किसी का रिजर्वेशन भी नहीं, लास्ट मोमेंट में एक दिन पहले, दो दिन पहले या 15 दिन पहले उनका कंफर्म होता है कि वो जाएंगे। और आजकल रिजर्वेशन कितने दिन पहले होता है? आजकल 2 महीने, उसके पहले 4 महीने पहले हो रहा था। तो हम लोगों को अगर 150 का रिजर्वेशन करवाना है तो कितना अलर्ट रहना पड़ता होगा। उसी दिन अगर 5 मिनट हो गया तो छत्तीसगढ़ से पूरे 8,000 लोग, कभी 4,000 लोग, कभी 5,000 लोग निकलते हैं। तो हम लोग उन 150 का रिजर्वेशन करवाने के लिए कितने अलर्ट रहते होंगे। केवल यात्रा कहां से कहां तक की है? बिलासपुर से लेके माउंट आबू तक की यात्रा है। अब किसी ने कहा दीदी हमें भी ले चलिए ना, चलना है हमें। अब हमको भी उनके प्रति प्यार उत्पन्न होता है कि इतने पवित्र प्रांगण में उनको लेकर के आए। हम लोग सेट करते हैं, है ना? अब सेट करते हैं तो सामने वाले को एडजस्ट करना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि नहीं, देखो हो सकता है कि जो दुबले दुबले रहेंगे हम उनको एक ही बर्थ में सुला देंगे, जिनकी हेल्थ अच्छी रहेगी उनको अलग दे देंगे। अब लिया गया पैसा तो सबसे बराबर, क्योंकि वो व्यक्ति जा रहा है, लेकिन उनके अंदर आया जिसने एक दिन पहले कहा था कि मैं जाऊंगा, या 10 दिन पहले या 15 दिन पहले, बहनों का प्यार कि वो उनको परमात्मा घर में लेके आते हैं। लेकिन बातें क्या होती है कि अरे मैंने भी इतना ही पैसा दिया, इसने भी इतना ही पैसा दिया, ठीक, लेकिन मुझे ऊपर वाली सीट मिल गई, इनको नीचे वाली सीट मिली। देखो इनको शायद ज्यादा ध्यान रख रहे हैं, मेरा कम ध्यान। प्रैक्टिकल बातें बता रही हूं आपको जो हम 40 साल से फेस कर रहे हैं। लेकिन जब वो यहां आ जाते हैं ना तो फिर सारी बातों को भूल जाते हैं और धन्यवाद देते हैं कि दीदी आप हमको बहुत 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 अच्छे स्थान पर लेकर के आए, हमारा जीवन ही क्या हो गया, बदल गया। तो वो बात बहुत बड़ी नहीं थी, केवल एक दिन का सफर था, लेकिन उस सफर में भी हमको कितनी शिकायतें हो गई। फिर ये जिंदगी भी तो एक सफर है। क्या गीत गाते हो, गीत सुना होगा ना कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, और हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या कभी गम, दुनिया चाहे बदलती रहे लेकिन हमारी खुशी नहीं बदलनी चाहिए। तो असंभव तो लगता है कि हम इतने खुश कैसे रह सकते हैं। हमें लोग कहते हैं कि आप मुस्कुराते बहुत हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि कई बार कई दर्द को अपने जीवन में समाना भी पड़ता है। लेकिन ये मुस्कुराहट परमात्मा ने आर्टिफिशियल नहीं दी है, आर्टिफिशियल नहीं है, ये मुस्कान नेचुरल है। कैसे बनी, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल उदाहरणों के आधार पर आपको समझाने का प्रयास करूंगी। क्योंकि बचपन से ही एक तो गॉडली गिफ्ट मिली हुई है कि सबको चेहरा मुस्कुराता हुआ लगता है। कभी मेरे अंदर दर्द भी आया होगा, तब भी लोगों को मेरा चेहरा मुस्कुराता हुआ लगा, ठीक है, लगा। प्रैक्टिकल बात कर रही हूं, लेकिन मेरे भीतर कुछ बातों को लेकर दर्द था, सोच थी। तो मुझे कहते थे कि थोड़ा तो कभी गंभीर रहा करो। गंभीरता है भी मेरे जीवन में, लेकिन साथ साथ मुस्कान भी है। ये बनी कैसे? एक तो परमात्मा, वो गीत है ना कि किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। तो परमात्मा का बन करके जीवन में एक मुस्कुराने की कला आ गई। और साथ साथ मेरे लौकिक पिताजी, मुझे 3 वर्ष की उम्र से याद है कि अगर मेरा चेहरा कभी थोड़ा सा ऐसा गंभीर सा हो जाता तो उनको लगता बच्ची को क्या हो गया। तो मैंने एक संस्कार बना लिया। जिस चीज का संस्कार आप बना लेंगे तो वो आपके जीवन का एक अंग बन जाएगा। आपने अगर क्रोध को संस्कार बनाया, छोड़ना मुश्किल। ईर्ष्या को संस्कार बनाया, छोड़ना मुश्किल। द्वेष को संस्कार बनाया, छोड़ना मुश्किल। प्रेम को संस्कार बनाया, छोड़ना मुश्किल। मुस्कुराने को संस्कार बनाया, छोड़ना मुश्किल। तो क्रोध को बनाएंगे, ईर्ष्या को बनाएंगे, द्वेष को बनाएंगे कि प्रेम को बनाएंगे? बनाएंगे तो यही ना, मुस्कुराने को भी। लेकिन हाँ, कोई बात है, किसी को बोला जा सकता है, लेकिन अपने शब्दों पर भी हमें ध्यान देना पड़ता है। कि उनकी गलती पर मैंने अटेंशन तो खिंचवाया, लेकिन मेरे शब्द कैसे थे? क्योंकि जो कहा जाता है कि अगर तलवार का घाव है तो वो ठीक भी हो जाएगा, लेकिन मेरे शब्द अगर ऐसे निकल गए और सामने वाले को घाव लग गया तो फिर वो जिंदगी भर उसको याद रखता है। कभी कभी हमारे मुख से ऐसा निकलता है कि मैं जिंदगी भर उसको माफ नहीं कर सकती। किसके किसके मुख से ऐसा निकला होगा कभी ना कभी? मैं मरते दम तक, कभी कभी हमारे पास आते हैं ना काउंसलिंग कराने, तो क्या कहते हैं, मैं मरते दम तक उनको माफ नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। ठीक, मरते दम तक ना, वो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं और आपने उनकी बातों को पकड़ा हुआ है। तकलीफ किसको होने वाली है? जिसने पकड़ा है। प्रैक्टिकल उदाहरण देती हूँ, ये रुमाल है ना, ये हल्का है या भारी है? पक्का पक्का हल्का है। लेकिन मैं इसको एक ही पोजीशन में कितनी देर पकड़ सकती हूँ? अगर ऐसे ही पकड़ी रहूंगी, हल्का है, कितनी देर पकड़ सकती हूँ एक ही पोजीशन में? ज्यादा देर नहीं ना। अच्छा, आपने कह दिया कि दीदी आप 1 घंटे तक एक ही पोजीशन में पकड़ी रहेंगी तो आपको हम 10,000 देंगे। चलो पैसे का सवाल है। तो मैंने 1 घंटे तक एक ही पोजीशन में पकड़ा, ठीक है, आपने बढ़ा दिया टाइम और पैसे भी बढ़ा दिए, चलो 2 घंटा, 20,000 की बात आ गई। लेकिन क्या एक ही पोजीशन में मुझे दर्द नहीं होगा? हाथ में दर्द होने लगेगा, लेकिन हल्का तो है ये रुमाल, लेकिन पोजीशन एक ही है। थोड़े देर में झुनझुनी आने लगेगी, दर्द बढ़ जाएगा। हो सकता है 24 घंटे अगर एक ही पोजीशन में पकड़ी रहूं तो पैरालिसिस अटैक भी हो सकता है। एक ही पोजीशन है तो ये तो होता है शरीर में पैरालिसिस अटैक, कई बार हमारे मन को भी ऐसे ही पैरालिसिस हो जाता है। हम किसी किसी की बात को पकड़े रहते हैं और वो खुश है, वो अच्छी जिंदगी जी रहा है, लेकिन हम उन बातों को बार 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 सोचकर और दुखी होते रहते हैं। अब वो व्यक्ति आगे की यात्रा की ओर निकल गया, सास भी हो सकती है, ससुर भी हो सकते हैं, देवरानी जेठानी भी हो सकते हैं, वो आगे की यात्रा की ओर निकल गए और हम आज तक उनकी बातों का वर्णन करते हुए उन बातों को फैलाते चले जाते हैं। यहाँ का वातावरण कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, शांति का भी है, पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं, पर्वत भी हैं, है ना? तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर बैठकर ज्ञान का श्रवण करना। और जिन बातों को हम सुनते हैं तो हमें लगता है नहीं, इन बातों को मैं प्रैक्टिकल अपने जीवन में स्थान दूंगी या दूंगा, लेकिन जैसे ही हम कर्म क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि हमारी बैटरी चार्ज नहीं है, तो दूसरों की बातों का असर हमारे अंदर पड़ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा किसी ने कुछ बोला होगा, बात इतनी बड़ी थी भी नहीं, लेकिन मेरे माइंड पर उसका असर पड़ गया। इसलिए ब्रह्मा कुमारी इसमें सबसे अच्छी बात है कि हम सुबह सुबह पॉजिटिव थिंकिंग की क्लास कर लेते हैं। ठीक है, जैसे देखो डॉक्टर के पास जाते हैं ना, कोई प्रॉब्लम आती है, कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि दर्द बहुत है, तो डॉक्टर दवाई लिख के तो दे देते हैं, लेकिन कहते हैं कि दवाई जो है ना परमानेंट इलाज नहीं है, आप थोड़ा एक्सरसाइज किया कीजिए और हेल्दी डाइट लिया कीजिए। तो हम पूछते हैं कौन से एक्सरसाइज करूं, तो कहते हैं आपको और कुछ नहीं बनता ना तो वॉकिंग कर लिया करिए, यहाँ ऑटोमेटिक वॉकिंग होती है, थोड़ा गाड़ी में बैठने का कम प्रयास कीजिएगा, टाइम का ध्यान रखिएगा, ऑटोमेटिक वॉकिंग होती है यहाँ पर, और डाइट भी अच्छी है, ना प्याज लहसुन है ना कुछ है, किसी को अंकुरित भी लेना है तो आप ले सकते हैं, पवित्र आत्माओं के द्वारा बनाया गया भोजन है, तो हेल्दी डाइट चाहिए। हेल्दी डाइट में हम पूछ लेते हैं क्या क्या लेना चाहिए। हम 15 दिन करते भी हमको अच्छा लगता है, लेकिन फिर यहाँ तो उड़ गए होंगे जल्दी, लेकिन थोड़ा रात को लगा होगा, अरे 7 बजे पहुंचने, वो भी नहा धो करके, है ना, स्नान करके आए होंगे ना सब, है ना, वो भी स्नान करके, लेकिन हो गया हो गया, ऑटोमेटिक आपकी नींद 3:30, 4, 4:15 खुली गई होगी, और आपको लगा होगा कि नहीं मॉर्निंग का सत्र अटेंड करेंगे। तो यहाँ पॉसिबल है तो क्या आप जब अपने अपने क्षेत्र पर जाएंगे तो वहां पॉसिबल नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। अब यहाँ क्या है, चाय बनी बनाई मिल रही है, भोजन बना बनाया मिल रहा है, वहां जा करके सब कुछ खुद करना है, लेकिन टाइम को मैनेज करना पड़ता है। डेली लाइफ में मेडिटेशन का और पॉजिटिव थिंकिंग की क्लास का क्या महत्व है, उस पर हमारी आज चर्चा चल रही है। और मैं कहूंगी ये जो मॉर्निंग के सत्र रहेंगे ना, आज तो दिन भर में सभी मेहमान आ जाएंगे, तो ये मॉर्निंग वाला सत्र कोई भी मिस ना करे। 5 डे से पूरे चलेंगे आपके सत्र मॉर्निंग के, और साथ साथ आपको फाइल भी मिल गई होगी कि पूरी दिनचर्या आप लोग की कैसी रहेगी। तो उस दिनचर्या में ये प्रयास कीजिएगा कि मॉर्निंग का सत्र और इनसाइट सेशन और कुछ मीडिया के भी सेशंस होते रहेंगे, अच्छे अच्छे स्पीकर्स से आप सुनेंगे, तो आपको फील होगा वाह जिंदगी का मजा आ रहा है। और ये अगर दिनचर्या में शामिल हो गया सब कुछ, तो हम जीवन का और भी अधिक आनंद ले पाएंगे। तो होता क्या है कि सुबह नींद खुली भी, लेकिन उसके बाद घड़ी देखी हमने, 5 बजे। हमारे साथ भी होता है कि चलो थोड़ा सा मेरे को आज अच्छा नहीं लग रहा है, कल ही तो ट्रेन से सफर करके आए हैं, थोड़ी थकान भी तो लग रही है, उस थकान को भी तो दूर करना जरूरी है, तो चलो थोड़ा सा लेट जाते हैं। फिर 5:30 बजे नींद खुली, अच्छा 7 बजे से क्लास है ना, थोड़ा सा और, तो 6 बजे, 15-20 मिनट में तो नहा लेंगे, लेटे ही हैं, गाड़ी नींद नहीं आ रही है, लेकिन 6:30। अब देखो एक एक रूम में 7-7, 8-8 लोग हैं, सबको स्नान करना है, कई बार उसी को लेके प्रॉब्लम हो जाती है। देखो यहाँ पर रहे ना, और फिर अभी तो आ गए, चलो हमारी उषा दीदी जी बहुत अच्छी बात बताती है, ट्रेन में आए कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, फिर यहाँ बहुत अच्छे रहे, फिर जाते समय ऐसा लगा कि ट्रेन में ना थोड़ा शांत रहेंगे, लेकिन फिर ट्रेन में वही प्रॉब्लम, ये मेरी सीट, ये मेरी सीट, ये मेरी सीट। ये दीदी की बात बता रही हूँ ना, दीदी को बोलेंगे नहीं नहीं मैं अपनी फ्रेंड के साथ ही बैठूंगी हमारे सेंटर पे, दीदी आप हमको उनके साथ बिठाइए ना, दीदी आप हमको उनके साथ बिठाइए ना। मैंने कहा देखो एक ही दिन की तो बात है, एक रात सोना ही तो है, बस थोड़ा एडजस्ट कर लो ना। नहीं दीदी अब मैं उनके साथ थोड़ा सा मेरा जमता है ना। अब देखो ध्यान रखो जमाना किसके साथ है, परमात्मा के साथ फ्रेंडशिप कर लो, सबके साथ फ्रेंडशिप हो जाएगी। मतलब आपको बताऊं कि मुझे माउंट आबू में 29 तारीख को पहुंचना था, लेकिन शाम 7 बजे तक मेरा रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हुआ था। ओके मैं बता रही प्रैक्टिकल बात, लेकिन मैं दिल से अनुभव करती हूँ कि भगवान मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार। शायद मैं कम करती होंगी, हूँ इस लाइन में मैं 42-43 साल से, लेकिन मैं भगवान की गोद में पल रही हूँ, तो भगवान जानता है कि इस बच्ची को मुझे कैसे ले जाना है। मुझे तो कुछ नहीं पता था, AC 2 में भी रिजर्वेशन नहीं हुआ, AC 3 में भी नहीं हुआ, रेलवे के कुछ भाई आते हैं, 6:30 बजे उन्होंने मुझे कहा कि AC 1 में दीदी खाली है, 2 बर्थ, करवाएंगे क्या आप। मैंने कहा मुझे पहुंचना बहुत जरूरी है क्योंकि प्रथम सत्र लेना है और पहुंचना बहुत जरूरी है, तो मतलब 15-20 मिनट भी नहीं, 5 मिनट के अंदर वो रिजर्वेशन पहले दिन 27 तारीख को कंफर्म हुआ। और इतने सकुशल आए, तो मैंने भगवान से कहा अच्छा AC 2 में नहीं बैठाना चाहते थे, AC 1 में बिठाना चाहते थे, आप कूपे के अंदर बिठाना चाहते थे, इसीलिए सब घटनाएं घटित हो रही थी। अब मुझे समझ में आया कि आप मुझे इतना प्यार करते हो। तो कई बार कुछ दृश्यों के पीछे, ये तो मैंने एक छोटी सी बात बताई, कई बार जीवन की ऐसी ऐसी घटनाएं घटित होती है उसके पीछे कुछ बहुत अच्छा छिपा होता है, लेकिन वो छिपा हुआ रहस्य हमें समझ में नहीं आता, और जब पर्दा खुलता है ना तो हमको लगता है वाह इस परिस्थिति के कारण मैं परमात्मा के करीब तो आ गई, थैंक्स परमात्मा का। कुंती ने ना, कुंती और भगवान की बात आपने सुनी होगी कि एक बार भगवान ने कुंती से पूछा था कि तुम्हें हर जन्म में क्या चाहिए, तो कुंती ने कहा था कि मुझे हर जन्म में दुख देना, क्योंकि दुख के क्षणों में आपकी याद बहुत आती है, बहुत आती है। तो इतने करीब आ जाते हैं हम कि ऐसा लगता है कि परमात्मा जैसे दिल की गहराइयों में समा गया। तो आपका जो कल का लेसन होगा वो आत्मसत्ता को लेकर के होगा। हम सभी कहीं ना कहीं देह से इतने अटैच हैं, मैं हम शब्द का प्रयोग करती हूँ ना, ऐसा नहीं कि सीट पर बैठी हूँ तो मैं कहती हूँ आप, नहीं, हम सभी कहीं ना कहीं देह से इतना अटैच होते हैं, इतना अटैच होते हैं, जब वो साथ छूटता है तो तकलीफ हमें बहुत होती है। और समय और परमात्मा इतनी बड़ी ताकत है जो उस परिस्थिति का सामना करने की शक्ति हम में आ जाती है। लेकिन जैसे बचपन में एक कहावत कहते थे ना कि जब प्यास लगेगी तब कुआं खोदोगे क्या, कि पहले ही कुआं खोद लो, क्या कर लो, बोलो थोड़ा किसी किसी को ना, प्रातः काल की बेला है, पंखा भी चल रहा है तो थोड़ा निद्रा देवी का आगमन हो रहा है, वो देखती रहती है कि आए तो हैं सुनने के लिए, लेकिन मैं थोड़ा इनको नींद की ओर ले जाऊंगी, सुनने नहीं दूंगी, है ना, वो आएगी धीरे से, थोड़ा सा एक बार उठ के खड़े हो जाइए चलिए, और हम क्लैपिंग कर लेते हैं, 1 2 1 2 3, हाँ 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, ठीक है, बैठ जाइए अलर्ट, क्योंकि मैं देख रही थी किसी किसी की आंखें क्या हो रही थी बंद। और देखो एक बात, भले अभी थोड़े से कम लोग हैं लेकिन मेरे लिए तो एक एक व्यक्ति एक एक लाख के बराबर है। कोई बात अच्छी लगे तो ताली बजा देना, ठीक है, ताली क्यों बजाना, अगर बगल वाला सो रहा होगा तो वो उठ जाएगा, ठीक है, और दूसरा मुस्कुरा देना, ठीक है, मुस्कुराएंगे आपको देख करके, दूसरा मुस्कुराएगा, मैं आपको देखकर मुस्कुराऊंगी, तो हम सब प्रथम दिन ही मुस्कुराने की कला सीख जाएंगे। और एक दूसरे को देखकर ओम शांति जरूर कह देना, ठीक, इस साइंस के आधार पर बता रही थी जो शुरू में बात निकली कि अगर हमने बहुत लंबे समय तक क्रोध को स्थान दिया, क्रोध को, तो ना हमेशा एक चेहरे पर ना ये चार लाइन बनी रहती है, ये तो है ही एक तो भाव है ना, फिर एक दो तीन चार, ठीक, अच्छी लगेगी क्या, आपने आईने के सामने खड़े रहना, आपको आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ अच्छा लगेगा कि गुस्से वाला, तो दूसरों को भी आपका कौन सा वाला चेहरा अच्छा लगेगा, मुस्कुराने वाला, तो मुस्कुराएंगे। 5 दिन में संस्कार बनाओ थोड़ा, ट्रेन में जाते भी गड़बड़ मत करना, अपर बर्थ भी मिल सकता है, मिडिल बर्थ भी मिल सकता है, हेल्थ ज्यादा हो सकती है, चढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो बर्थ मिला है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी है अगर आपके शरीर में तो आप चढ़ सकते हैं ऊपर वाले बर्थ में भी, क्योंकि ये वाली प्रॉब्लम ट्रेन में बहुत आती है। एक उदाहरण बताती हूँ, बिलासपुर से बैठी तो बिलासपुर में एक व्यक्ति चढ़ा, तो उसने कहा कि दीदी बस रायपुर तक जाना है, 2 घंटे आपकी सीट पर बैठ जाऊं। मैंने कहा ठीक है बैठ जाइए। वो उतरे रायपुर में, फिर रायपुर में फिर एक व्यक्ति चढ़ा, तो उन्होंने कहा दीदी थोड़ा राजनांदगांव तक जाना है तो आपकी सीट पर बैठ जाऊं। तो मैंने कहा ठीक है बैठ जाइए, तब तक मुस्कुराहट बनी हुई थी तो मैंने कहा हाँ बैठ जाइए। फिर राजनांदगांव में वो उतरे, तीसरा व्यक्ति चढ़ा, उसने कहा कि बस गोंदिया तक दीदी जाना है, 1 घंटे का ही तो रास्ता है, गोंदिया तक बैठ जाऊं। मैंने फिर परमात्मा को याद किया कि चलो बाद में रात को तो सो ही जाऊंगी मैं, चलिए बैठ जाइए। तो गोंदिया तक वो व्यक्ति बैठ गया, गोंदिया में वो व्यक्ति उतरा, चौथा व्यक्ति चढ़ा, व्हाइट ड्रेस देखते ना मुस्कुराता हुआ चेहरा, तो उसने कहा दीदी बस नागपुर तक जाना है, बैठ जाओ। मैंने बिल्कुल क्रोध नहीं किया था, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा कि मैं ना बिलासपुर से अभी गोंदिया तक बैठे बैठे आ रही हूँ, तो प्लीज ना दूसरे के साथ थोड़ा सा शेयर कर लीजिएगा, मैं थोड़ा कमर सीधी करना चाहती हूँ। ओ व्यक्ति आवेग में आ गया, उसने कहा पूरी रेलवे को खरीद लिया है ब्रह्मा कुमारियों ने, ट्रेन ही खरीद ली है वो अब मैं ये जो चार व्यक्तियों को स्थान दे रही थी अब पांचवे व्यक्ति को भी दे देती और नागपुर में भी फिर कोई चढ़ता है ना। तब हमेशा ही आपको फेस करना है, ऐसी बात नहीं है, आपका अधिकार है, तो उस अधिकार को प्यार पूर्वक सम्मान पूर्वक कहना भी पड़ता है। लेकिन वो उसके संस्कार थे, जो उन्होंने मुझे बहुत अपशब्द कहे, उसके बाद फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं भाई साहब आप बैठ जाएं, अब तो बिल्कुल नहीं बैठूंगा, अब तो बिल्कुल आप लोगों ने पूरी ट्रेन खरीद ली है। तो कई बार इन परिस्थितियों को हमें भी फेस करना पड़ता है, ये बात नहीं है कि हमने वाइट ड्रेस पहना है तो हमें, ये बहुत छोटी छोटी बातें मैं बता रही हूँ जो दिनचर्या में आती है। और मैंने आपके साथ शेयर इसीलिए की कि हो सकता है कई बातें आपकी गलती न होने के बाद भी आपको फेस करना पड़े। लेकिन होता क्या है कि अगर उन्होंने दो शब्द कहे और मैं चार कहूंगी तो वो ट्रेन में वातावरण बिगड़ता कि अच्छा हो जाता। तो मुझे चुप रहना था और अपने अधिकार का प्रयोग करना था, न कि बोलकर, न कि झगड़ा करके कि अरे मैंने इतना पैसा दिया ये है मेरा बर्थ है वो, नहीं शांत है मेरा बर्थ है मेरा अधिकार है, है ना। लेकिन मैं 8-9 घंटे तक वो उस बात को फेस कर रही हूँ, लेकिन प्रेम पूर्वक किया, प्रेम पूर्वक किया, उसको फेस करना भी नहीं कहेंगे। लेकिन वैसा ही वो व्यक्ति है जो आपको, वो आपकी पत्नी भी हो सकती है, वो आपका पति भी हो सकता है, वो आपके बच्चे भी हो सकते हैं, वो आपका पड़ोसी भी हो सकता है, और जिनके आप बहुत क्लोज हैं वो भी कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं जो हमारे सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। तो मैंने पहले भी कहा कि वो बदलने वाले नहीं है, तो बदलना मुझे ही होगा। इन बातों को कुछ समय से मैं प्रैक्टिकल कर रही हूं कि कभी कभी कोई व्यक्ति माइंड का प्यार चाहते हैं और कोई हार्ट का प्यार चाहते हैं। ठीक, माँ है हमेशा अपने बच्चे को हार्ट से ही प्रेम करती है, उसके लिए वो डांट भी सकती है, लेकिन बच्चा जानता है कि माँ मुझसे बहुत प्रेम करती है, इसलिए वो 2 मिनट नाराज होने के बाद फिर से माँ से आकर के लग जाएगा। ठीक, आप अपने बॉस को, आप ऑफिस में हैं, किसी कंपनी में हैं, या मीडिया से जुड़े हुए भाई बहन हैं, आपके सीनियर भी होंगे, कई बार सीनियर की कोई बात अच्छी नहीं लगती है, गुस्सा आता है हमें, लेकिन क्या आप अपने सीनियर को डायरेक्ट उनके मुख पर कुछ कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों, क्यों नहीं कह सकते? रॉन्ग है वो बात, कह देना चाहिए, क्यों नहीं कह सकते? सीनियर है, भले वो उम्र में छोटे होंगे लेकिन पोस्ट में वो बड़े हैं, पद में वो बड़े हैं, तो आप उनको नहीं कह सकते हैं। बाहर आकर के आप 10 लोगों को बताते हैं, या फिर आप घर जाते हैं, बॉस ने आज बहुत बुरे तरीके से आपको बोला था, तो आप उनके ऊपर तो गुस्सा नहीं उतार पाए, घर में आकर पत्नी के ऊपर या बच्चों के ऊपर गुस्सा निकालते हैं। पत्नी के ऊपर अगर रोज गुस्सा निकालते रहे, बच्चों के ऊपर निकालते रहे, तो वहां भी रिलेशन बिगड़ने ही वाले हैं। बच्चे ने कुछ कहा था, पापा आज ये चीज लेके आना जब आप घर लौटेंगे, पापा भूल गए। अब बच्चा गया जोर से आकर के उनसे लिपटा, पापा लाए हैं कि नहीं, पापा लाए हैं कि नहीं। अरे एक तो ऑफिस में टेंशन, यहां पर भी ये बच्चे लगा एक तमाचा बच्चे के गाल पर। अब बच्चा रोते 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 गया बिस्तर पे और सो गया, लेकिन वो तमाचा उसको याद है जो जड़ दिया आपने। और अगर रोज ऐसे ही एक एक तमाचा लगता रहे तो पापा से डर लगेगा या संबंध अच्छे होने लग जाएंगे? रात को वो बच्चा सो गया है, भले जाके प्यार कर दिया, अरे मैंने मार दिया इसको, लेकिन रिलेशन तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में जो बात गई है ना, वो अब बिगड़ने वाले शुरू हो गए, बचपन से ही शुरू हो गए। इसीलिए ब्रह्मा कुमारी में एक बात बहुत अच्छी कही जाती है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले घर से शुरुआत कीजिए, बाहर तो बाद में, पहले घर से। और घर में जब अच्छे संबंध होते हैं, मधुर संबंध होते हैं, तो बाहर भी जीवन जीने का मजा आ जाता है। हम सोचते हैं शायद किसी हिल स्टेशन में जाएंगे, बहुत खुशी मिलेगी, फिल्म देखेंगे, बहुत खुशी मिलेगी, है ना, या क्लब में जाएंगे तो खुशी मिलेगी। लेकिन खुशी है ना अंदर की बात है, ये बाहर ढूंढने से नहीं मिलती है, अंदर की बात है। कोई 25-30 आइटम रोज सामने देख करके भी खुश नहीं है, लेकिन कोई केवल रोटी सब्जी खा करके भी खुश है। आज जो हमारी सीनियर दादियां रही हैं, जो हमारी वरिष्ठ दीदियां रही हैं, उन्होंने किस प्रकार ये शुरुआत की है परमात्मा के प्यार में, वही जानते हैं, वही जानते हैं। और दूसरा तो उसका अनुभव भी नहीं कर सकता। आज इतना बड़ा सब कैंपस देखते हैं, सुंदर रूप देखते हैं, तो लोगों को कई बार लगता है कि अरे इनके पास शायद धन की शक्ति बहुत है। ऐसी बात नहीं है, यहाँ का मैनेजमेंट और जो हमारे भाई बहन अपने तन की शक्ति को लगाते हैं, वो शायद बाहरी दुनिया में इतना पेमेंट करने के बाद भी लोग दिल की गहराइयों से नहीं कर पाते हैं। एक बार शिरडी के मैनेजमेंट कमेटी के जो सीनियर थे, वो यहाँ आए और उन्होंने दादी प्रकाशमणि जी से पूछा कि यहाँ का इतना वेल सेटेड मैनेजमेंट है, आप एक एक को कितनी सैलरी देते हैं? कई बार लोग हम लोग से पूछते हैं कि दीदी आप लोगों को कितनी सैलरी मिलती है, तो हम लोग कहते हैं हम लोग को कोई सैलरी नहीं मिलती है, सैलरी है केवल खुशी, आनंद, प्रेम जो हम बांटते हैं। तो वो इतना अथाह है प्रेम का धन कि कैसी व्यवस्थाएं परमात्मा हमारे लिए करवाते हैं वो हम ही जानते हैं। जिस ज्ञान सरोवर में आप बैठे हैं, मैं भी बहुत छोटी थी, मैं लगभग 4-5 वर्ष की उम्र से ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हूँ और 9 वर्ष की उम्र से तो बहुत एक गहराई से जुड़ गई। तो यहाँ पर कुछ नहीं था, बस पर्वत थे, लेकिन उस पर्वत में पत्थर उठाने का भी योगदान हमने दिया है ना। 42-43 साल हो चुके हैं, दादी प्रकाशमणि जी खुद आए थे और जब भी कोई ग्रुप आता तो पांडव भवन से यहाँ लाते थे, और ये धीरे 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 इतना सुंदर रूप बना कि आज भाइयों ने अगर तन लगाया माना धन लगाया, मन की शक्ति लगाई माना धन लगाया। हाँ, निश्चित रूप से बिना धन के तो कुछ नहीं होता, लेकिन मुझे यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी लगी कि दाता का हाथ है, परमात्मा का घर है, और बूंद बूंद से घड़ा भर के इतना सुंदर ये कार्य जो है वो चल रहा है। तो तन की शक्ति, मन की शक्ति, धन की शक्ति, संबंध की शक्ति, सब लगी है, लेकिन प्रेम पूर्वक लगी हुई है। और आप कुछ भी चीज प्रेम से करते हैं तो उसका फल आपको मिलता है, लेकिन आपके अंदर वो प्रेम का भाव नहीं है ना। प्रैक्टिकल उदाहरण, दिनचर्या की बात चल रही है कि जहां से मैं जुड़ी हूं या जहां रह रही हूं, कि एक बार मैंने कहा पूरे सेवा केंद्र में व्हाइट वॉश करना है, तो मैंने बुलाया है ना व्हाइट वॉश वाले को। मैं कहे पूरे सेवा केंद्र का कितना लगेगा, बिलासपुर की बात है। तो उसने कहा 80,000 मटेरियल अलग। नहीं थी वो धन की शक्ति हमारे पास, तो हमने हमारे ही समर्पित भाइयों को मोटिवेट किया, हमने अपनी बहनों को मोटिवेट किया कि जो व्हाइट वॉश हम लोग कर सकते हैं फिर हम दूसरे से क्यों कराए, 80,000 खर्च क्यों करें। रियल बात बता रही हूं। और जितना नीचे नीचे दरवाजे वगैरह पेंटिंग हमको करते बने, मैं खुद क्यों, भाइयों ने किया, और व्हाइट वॉश करते 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 उनको करना आ गया, 80,000 क्या हो गए, बच गए ना। तन की शक्ति लगी तो धन बचा कि नहीं बचा। आज सोचिए हम परमात्मा के घर में आए हैं, ऐसा लगता है गोद में पल रहे हैं। बचपन में मैं कहानी सुनती थी ध्रुव तारे की, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं वही ध्रुव तारा हूं जिसे परमात्मा की गोद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पिता की गोद नहीं प्राप्त हो पाई तो उसने तपस्या की और परमात्मा की गोद मिली। तो लौकिक पिता लौकिक माँ हर जन्म में बदल रहे हैं, लेकिन परमात्मा जो हमारे पिता हैं, अदृश्य शक्ति हैं, दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो इतना प्यार करते हैं जो मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि किस प्रकार आज ये इतने वर्ष निकल गए। तो अंदर से गीत निकलता कि पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों, है ना, क्योंकि मुझे तो लगता है मैं कल ही आई हूँ ब्रह्मा कुमारीज में, और बहुत जल्दी जैसे एक समय निकल गया। तो इस समय को देखते हुए अपनी दिनचर्या को हमको कितना श्रेष्ठ बनाना आना चाहिए। मैंने गुस्सा किया, नुकसान मुझे होने वाला है। मैंने ईर्ष्या की, नुकसान मुझे होने वाला है। द्वेष मैंने रखा, नुकसान मुझे होने वाला है। कंपटीशन अच्छा है, अगर शुद्ध है तो अच्छी बात है, लेकिन ईर्ष्या रख के कंपटीशन में हम किसी की टांग खींच के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत बहुत नुकसानदायक है। आजकल एक बात मैं सबको बताती हूं, दिल से मैंने सुनी भी थी गहराई से, और इसको मैंने अपने जीवन में अडॉप्ट किया हुआ है, और शायद बचपन से मेरे संस्कारों में वो बात नहीं आ पाई। मैं सच कहती हूं, जीवन में मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है, और मुझे दुश्मनी करने का शौक भी नहीं है, मुझे दुश्मनी करने का शौक भी नहीं है। और अगर कोई मुझसे दुश्मनी रखते होंगे, मेरे कई दुश्मन बना वो मुझसे दुश्मनी रखते होंगे, लेकिन फिर भी मैं इतनी मार्जिन लेके चलती हूं कि मैं उनको देखकर मुस्कुरा दूं ताकि भविष्य में दोस्ती की गुंजाइश हो जाए। मुझे पता चलता है उनके वाइब्रेशन से कि शायद, कभी कभी होता है ना, आप बहुत अच्छे भी हैं तो भी आपके दुश्मन होते हैं, आपसे दुश्मनी रखते हैं कि ये कम समय में इतना रन कैसे कर गए। फील्ड में आपको इन चीजों का सामना करना पड़ता होगा। ये मेरे साथ बहुत घटित हुआ है, आप ये मत सोचना मेरे साथ कुछ घटित नहीं हुआ, सारी प्रैक्टिकल बातें कर रही हूं। सब घटित होता है, सब घटित होता है, लेकिन कोई कहता भी है, कई भी कभी मेरे साथ रहने वाली छोटी बहनें भी कहती हैं कि दीदी आप ना बहुत भोले हो, इनोसेंट हो एकदम, वो आपके साथ ऐसा करता है तो फिर आपको भी तो थोड़ा ऐसा। मैं समझती सब हूं, ऐसी बात नहीं कि मुझे समझ नहीं है कि वो मुझसे थोड़ा सा छल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं इतनी इनोसेंट बनी रहती हूं कि मुझे पता ही नहीं आपके छल का कि आप कर रहे हो। तो किसी ने मुझे जैसे एक वरदान दे दिया था कि आप कभी किसी से दुश्मनी करोगी नहीं, और अगर किसी ने आपके साथ दुश्मनी की तो जीवन में कभी सफल ही नहीं हो पाएगा। और ये मैंने फील किया है अपने जीवन में, मैं क्यों किसी के लिए गलत सोचूं? आपकी विशेषता आपकी है, आपका रूप रंग आपका है, आपकी पद प्रतिष्ठा आपकी है, मेरी मेरी है। और हमारे बड़े शायद एक आध दिन आपकी उषा दीदी जी की भी क्लास है, उस क्लास को आप जरूर सुनिएगा। और उन्होंने एक बात कही थी कि जो भाग्य, जो प्रारब्ध मैंने अपने कर्मों से तैयार की है, उस प्रारब्ध को छीनने की ताकत स्वयं भगवान में भी नहीं है, तो फिर मनुष्यों की क्या औकात है जो मेरे भाग्य को मुझसे छीन सके? क्योंकि ये मैंने अपने कर्मों के आधार पर तैयार किए हैं, तो भगवान भी उसको छीन नहीं सकता है। तो ये बात भी अंदर में ऐसी चली गई, और आज ये पक्का कर लें कि इस रंगमंच में आप एक स्पेशल एक्टर हैं। आपके जैसा न तो दिखने में कोई है पूरे संसार में है कोई? कोई भी नहीं है, न पद प्रतिष्ठा में है। तो फिर किसी से भी ईर्ष्या क्यों रखना, द्वेष क्यों रखना? तो अंदर में बस इसको रट डाला और इसको अपने जीवन में स्थान दे दिया। मुझे बहुत खुशी होती थी कि स्कूल लाइफ से मैं हमेशा प्रेयर टाइम से मैं आगे ही खड़ी रही हूं। क्यों? क्यों? मेरी हाइट कम है तो इसको लेकर के किसी किसी को प्रॉब्लम हो सकती होगी कि अरे हाइट बढ़ाना है, लेकिन मुझे शुरू से इस बात की खुशी बहुत रही कि मुझे आगे ही बैठना पड़ता है ताकि मुझे मंच में जो कुछ हो रहा है मुझे ऐसे ऐसे करके देखने ही नहीं पड़ता क्योंकि मेरी हाइट कम है। तो मैं एक स्पेशल एक्टर हूं। ठीक है, हाइट बढ़ाने के लिए कई लोग कई प्रयास करते हैं, मैं भी खेली होंगी, कूदी होंगी, दौड़ी होंगी, सब कुछ की होंगी, लेकिन मेरी हाइट एक वंश के हिसाब से ऐसी है। तो इसकी मुझे खुशी है कि मुझे हमेशा आगे बैठने को मिला है। कोई अगर मेरे आगे आ भी गया होगा ना तो मुझे नहीं, आप आगे आ जाइए, तो आगे कर दिया गया। ब्रह्मा कुमारी इसमें भी आई, हाइट कम थी, आगे बैठने का मौका मिला। तो ये गलत बात है कि अच्छी बात है? तो इसको मैंने अपनी खुशी का अंग बना लिया। ठीक है, तो ये बात आज रट डालें। क्या रट डालें? आप रटो इसको, आई एम अ यूनिक पर्सन। आप सब, यू आर ए यूनिक पर्सन, नो वन कैन प्ले योर रोल बेटर देन यू। आपके जैसा रोल कोई नहीं निभा सकता। ठीक है, अब कोई कहते, सब मैं प्रैक्टिकल बात बता रही। अच्छा, आपके गाल में डिंपल पड़ते हैं तो आपकी सास बहुत प्यार करेगी आपको। अब इधर सास वास कुछ नहीं है, हम सब भाई बहन है ना, तो हमें भी सबके साथ सम्मान से रहना है, उनको भी हमारे साथ सम्मान से रहना है। अगर मेरे अंदर कुछ कमी कमजोरी है तो उसकी परेशानी मुझे होती है, और उनके अंदर भी है तो उनको भी अपने आप को चेंज करना है। अभी कुछ दिन से और एक थॉट अंदर में बहुत अच्छी रीति चल रहा है, और लगभग 60-70% इसको मैंने स्थान दे दिया। मेरे कर्म को मैं जानती हूं, मेरे सोच को, मेरी सोच को मैं जानती हूं, उनके कर्म और उनकी सोच को वो जानते हैं। जैसे देखिए, आप फ्लाइट में बैठते हैं तो जो एयर होस्टेस रहते हैं वो आपको देखकर हार्ट से मुस्कुराती है कि माइंड से मुस्कुराती है? माइंड से। क्यों? क्योंकि उनको ट्रेनिंग दी जाती है वैसे कि पैसेंजर आएंगे आपको गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, ऐसे करना है। आप भी उनको देख के मुस्कुरा देते हैं लेकिन उनको वो ट्रेनिंग दी गई है। लेकिन हमारी दादियां, हमारी आदरणीय अभी रतन मोहिनी दादी जी ने 8 अप्रैल को ही है ना देह त्यागी। मैं उनसे बहुत जुड़ी, उनका बहुत प्यार मिला मुझे, लेकिन मैंने हमेशा दादी जी का चेहरा मुस्कुराते हुए देखा 101 वर्ष की उम्र में भी। 25 मार्च को उनका बर्थडे मनाया गया, 100 वर्ष की हुई वो, और 8 अप्रैल को उन्होंने देह त्यागी। तब भी उनको मंच पर लाया तो मुस्कुराते हुए ही थी, बातचीत नहीं करती थी, अब बोलना जैसे थोड़ा बंद हो रहा था, लेकिन किसी को भी देखकर मुस्कुराती बहुत थी और मुझे तो हमेशा ऐसे ही प्यार करती थी। तो वो अंदर में चला गया मेरे। कभी कभी किसी के थॉट, कोई हमको कोई अच्छे शब्द कह देता है ना, वो हम जीवन पर्यंत भूल नहीं पाते हैं। तो क्यों ना हम भी अपने मुख से अच्छे शब्दों का प्रयोग करें जिससे सामने वाले के अंदर खुशी आ जाए। तो बस वो लाइन मेरे अंदर चली गई थी कि आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी ने मुझे एक लाइन कही थी कि तुम 1000 के बीच में भी खड़ी रहोगी ना तो मैं तुमको पहचान लूंगी। तो मुझे लगा देखो हाइट भी छोटी है लेकिन इतनी सीनियर दादी जो संस्था की चीफ है वो मुझे पहचान लेती है, माना मैं एक स्पेशल एक्टर हूं। उनका प्यार मिला, वो प्यार नहीं भूलता ना, तो जब वो प्यार दे सकती है तो क्या हम लोग नहीं दे सकते? दे सकते कि नहीं? वो भी तो एक साधारण थी और उसके बाद धीरे धीरे ऊंचाई पे पहुंची, तो जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? जब वो सबके साथ प्यार से रह सकते तो हम क्यों नहीं? जब वो अच्छे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? बस देना पड़ेगा अटेंशन। क्या अटेंशन? गुलजार दादी जी कहा करती थी हमारी, जो उसके पूर्व संस्था की चीफ थी, कहती थी कि मेडिटेशन इज अटेंशन विदाउट एनी टेंशन। अभी हम किसी को कुछ बोल के आ गए, मान लीजिए रूम में है ना, रूम में वो देरी से स्नान करके बाहर निकले, उनको हो सकता है थोड़ा टाइम लगता हो, इधर हमारा कुटुर कुटुर चालू हो गया, फिर जब वो स्नान करके निकले तो हमने कुछ शब्द बोल दिया है ना, अरे मेरे को भी तो जाना है ना 7 बजे के क्लास में, क्या आप ही को जाना था क्या, आप इतने देर क्यों नहा रहे थे, आप मेरे लिए भी तो थोड़ा सा कुछ सोचा करो, बोल दिया। और फिर हम नाराज नाराज होकर यहाँ आ गए, क्लास हो जाने दीजिए फिर सुनाऊंगी उनको, अभी सुना नहीं पाई हूँ, थोड़ा बाद में तो जरूर सुनाऊंगी। अब मेडिटेशन में बैठे यहाँ पर आकर, अब मंजू दीदी कमेंट्री करा रही हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप, हमारे अंदर से समझती क्या अपने आप को? जाके तो नाश्ते के पहले या मिलेंगी क्लास में, उसके बाद तो सुनाई दूंगी। मतलब हमारे अंदर ये संस्कार हमने बना लिया है कि सुनाना ही है, सुनाए बिना ना चैन नहीं पड़ता। तो हम लोगों को परमात्मा ने सिखाया कि भगवान को अपना दोस्त बना लो और जो कुछ बातें बतानी है ना किसी के बारे में भी वो भी उसी को बता दो और क्या हो जाओ हल्के, लेकिन हाँ ताली बजा दो। कई लोग कहते नहीं दीदी थोड़ा सुनाना पड़ता है, आपको नहीं पता, ये कहते हैं ना हमें, आपको नहीं पता दीदी थोड़ा सुनाना पड़ता है नहीं तो और ही सिर चढ़ जाते हैं, ये वाले शब्द कहे जाते हैं। जब मैंने उनको वैसा सर्टिफिकेट दे दिया तो अब वो बदलने वाले नहीं है, वो बदलने वाले नहीं है, क्योंकि कहते ना जब ऋषि मुनि विश्वामित्र है ना, वशिष्ठ तो खैर बड़े शांत मूरत बताए जाते हैं, दुर्वासा ऋषि सबकी बात बताते हैं, ऋषि कहते हैं उनको, लेकिन अगर उन्होंने वरदान के बदले श्राप दे दिया तो वो श्राप लग जाता। इतने दिनों से मेडिटेशन किया 29 दिन 30 दिन, लेकिन 5 मिनट के लिए मान लीजिए मुझे गुस्सा आ गया तपस्या है मेरी 30 दिन की, लेकिन 5 मिनट भी नहीं, 2 मिनट या 1 मिनट के लिए मैंने कुछ ऐसा बोल बोल दिया, तो वरदान का पूरा जो बल है वो मेरे उस शब्द में आ गया, और वो कहते हैं ना वरदान श्राप के रूप में बदल जाता है। तो कई लोग कहेंगे नहीं नहीं दीदी, आप लोग तो बिल्कुल ऐसे नहीं बोलना, आप मोटिवेट करो सबको, है ना। तो क्या नहीं कर सकता कोई? आज अगर हमने किसी को सर्टिफिकेट दे ही दिया कि वो बुद्धू है बुद्धू है बुद्धू है, बच्चों को भी हम कहते हैं, 2 बच्चे हैं ना, बहुत तुलना करते हैं। हमारे पास कई बच्चे आते हैं बिलासपुर में, 300-300 साढ़े 300 बच्चों की 15-15 दिन क्लास चलती है। पेरेंट्स आते हैं कि इस बच्चे की काउंसलिंग कर दीजिए, बच्चे अलग से पेरेंट्स सामने नहीं रहेंगे तो कहेंगे दीदी आपको अपनी बात सुनाते, कि हर समय माँ जो है ना मेरी तुलना मेरी बहन के साथ करती है। अब बहन ड्राइंग में भी, पेंटिंग में भी, डांस में भी, म्यूजिक में भी, पढ़ाई में भी, सब में होशियार। बार 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 उस बच्चे को आप देख, तेरी बहन को देख, तुम्हारी बहन को देखो, तुम्हारी तुम कितने बुद्धू हो, तुम कितने बुद्धू हो। तो वो कहता है लो अब मैं बुद्धू बन के ही दिखाऊंगा। उसके सब कॉन्शियस माइंड में आपने वो बात डाल दी है। हम ही गलती करते हैं, कई बार हम गलती करते हैं। कभी कभी किसी को मोटिवेट करने के लिए भी किया जा सकता है कि नहीं तुम नहीं कर सकती, तो वो करके दिखा देते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ है, है ना। मतलब मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मैं बचपन से थोड़ी कमजोर थी। अभी आपको नहीं दिखाई दे रही होंगी, लेकिन मैं बचपन में थोड़ी कमजोर थी, है ना। तो थोड़ा सा नहीं वो कर सकती ना, तुम थोड़ा सा वो कर सकती ना, तो मैंने उसको पॉजिटिव रूप में लिया, और मेरी विल पावर क्या होती गई, बढ़ती चली गई। पेरेंट्स गलत नहीं होते, पेरेंट्स बच्चों को प्यार ही करते हैं, लेकिन बच्चे हैं ना तो कई चीजों को वो समझ नहीं पाता है। तो दिनचर्या में, घर में भी या ग्रुप में भी कभी कभी किसी को हम कमेंट पास कर देते हैं, तो हमारे यहाँ की जो पॉजिटिव थिंकिंग की क्लास होती है उसमें सिखाया जाता कि किसी को भी अपशब्द भी नहीं कहिए, नहीं तो उसका भारीपन आपको ही अनुभव होगा। तो हल्के रहना है ना, हल्की चीज हमेशा उड़ती है ना, पतंग की डोर ढीली की जाती है ना, तो पतंग ऊपर की ओर उड़ती है। ऐसे ही आत्मा को नेगेटिव थॉट से, वेस्ट थॉट से मुक्त रखने का प्रयास कीजिए, आएंगे, लेकिन प्यार से कंट्रोल करें कि नहीं बहुत हो गया, अब नेगेटिव और वेस्ट बहुत हो गया, अब पॉजिटिव की ओर यात्रा मेरी बढ़ेगी। आज ही आप ये होमवर्क करके देखिएगा, ग्रुप रहेगा, रूम में भी शायद 8-8, 9-9 एक साथ होंगे, समझ सकती हूँ कि थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर केवल 400 का ही एकोमोडेशन है, है ना। और खास ये मीडिया कॉन्फ्रेंस है, तो आप देखेंगे पूरे भारत देश से एडिटर, और आप तो अभी सब देखेंगे पूरे आपकी जो बुक लिस्ट है ना उसमें बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स आपको सुनने को मिलेंगे। तो जैसी व्यवस्था प्राप्त हुई है, मैं कहती हूँ इससे अच्छी व्यवस्था, क्योंकि मैं सब जगह गई हूँ आज कई बार, कितना कितना पेमेंट करके भी इतनी अच्छी व्यवस्था प्राप्त नहीं हो पाती है। लेकिन आज हम परमात्मा के घर में आए हैं, हमारी एक बहन है हमारे साथ रहती है, तो मैं खुद राधा स्वामी सत्संग में भी गई हूँ, हमारे यहाँ पर आए भाई ने दीदी मैं आपको ले चलूंगा, तो मैंने देखा वहाँ कितने भी सीनियर पहुंच जाए, मंत्री पहुंच जाए, विधायक पहुंच जाए, नीचे ही बैठना पड़ता है, नीचे ही बैठेंगे, किसी के लिए सोफा नहीं, किसी के लिए चेयर नहीं, सबका मोबाइल ले लिया जाता है, ठीक है। कई बार अभी है ना प्रयागराज गए, लोगों को स्नान करना था, कैसे कैसे व्यवस्थाओं में वो रहे, और आज हमको एक बैग तो मिला, स्नान करने के लिए गर्म पानी तो मिला, भोजन करने के लिए ब्रह्मा भोजन तो मिला, चाय बनी बनाई तो मिली, नाश्ता इतना अच्छा तो मिला, तो इसके लिए परमात्मा को थैंक्स देना चाहिए कि शिकायत करनी चाहिए? थैंक्स देना चाहिए। तो दिल से हर बात के लिए थैंक्स निकलता रहे, थैंक यू थैंक यू। हम प्यार से परमात्मा को बाबा कहते हैं ना, शिव बाबा कहते हैं, है वो ज्योति बिंदु स्वरूप। तो हर समय थैंक्स थैंक्स थैंक्स। तो आप देखेंगे परमात्मा आपको गोद में उठाकर जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नहीं। हर इच्छाएं जैसे हमारी पूर्ण होनी शुरू हो जाएगी। कल ही मेरे साथ आई हुई दीदी एक मुझे सर्टिफिकेट दे रही थी। दीदी बस आपको बोलने भर की देरी रहती है ना, और सामने वाला वो आपको दे देता है, बोलती भी नहीं है, क्यों बोले ज्यादा, है ना। आज जो मिला मैंने कहा, मैं सुनाया सबको, हम लोग 150-150 मैंने लोग एक साथ रहते थे समर्पित देने, उस हॉल में रुके हैं। आज मुझे केवल 8-10 साल हुए ऐसे जो रूम की सेटिंग की गई है, सच बता रहे हैं। नीचे शांति वन में हॉल था, अब सभी रूम की डिमांड करते हैं, तो चलो 7-7 बेड का 8-8 बेड का रूम बनता गया। आप लोगों के लिए तो इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हो गई। हम लोग तो 150 बहनें एक साथ रहती थी, एक साथ सोती थी, और आज देखिए इतना सुंदर ये रूप हो चुका है। तो यहाँ पर भी अगर कोई शिकायत करता है तो वो यहाँ की गलती नहीं है, वो आपकी गलती होगी कि आप देख क्या रहे हैं। सुंदरता देखने वाले के आंखों में होती है, जिस रंग का चश्मा पहना होगा वही दिखाई देगा। तो सुंदरता को देखने का चश्मा पहन लीजिए तो सब कैसे लगेंगे, प्यारे लगेंगे, सुंदर लगेंगे, और सबकी विशेषताएं हमारे अंदर आती चली जाएंगी, ठीक है ना। तो आज ये प्रथम दिन कि किस प्रकार दिनचर्या में खुशी को, मुस्कान को, सकारात्मक चिंतन को स्थान देना है। कल से आपका जो शिविर होगा, क्योंकि संख्या बढ़ जाएगी, तो हार्मनी हॉल में होगा। आगे के सभी प्रोग्राम्स आपके हार्मनी हॉल में होने वाले हैं, और सूचनाएं दी जाएंगी, और जो आपको है ना प्रोग्राम बुक लिस्ट मिली है उसको देख करके आप हर प्रोग्राम अटेंड कीजिएगा। आज शाम का आपका वीडियो का प्रोग्राम है, और आज आप थोड़ा सा इसी परिसर में आर्ट गैलरी भी है, मेडिटेशन रूम भी है, ऊपर बहुत सुंदर बाबा का कमरा बना हुआ है, वो सब भी देख सकते हैं। और अपनी दीदी को भी बता करके, क्योंकि शाम 6:30 से 7 है मना वीडियो सेशन है, तो आज आप थोड़ा बहुत बाहर घूम भी सकते हैं। पांडव भवन भी है और नकी लेक भी है, वहां का भी भ्रमण कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि पानी जितना चाहिए उतना ही प्रयोग करें, जबरदस्ती बाल्टी से पानी ढोलते मत जाएं। कपड़े भी है ना वैसे तो लाए होंगे पर्याप्त, अति आवश्यक है तभी आप धोइए। कमरे से निकलते हैं तो बाथरूम का लाइट का स्विच ऑफ कर दीजिए, सब बातों का, क्योंकि ये आपका घर है, घर में हर चीज का ख्याल रखते ना, घर में तन मन धन सब का ख्याल रखते ना, तो ऐसे ही यहाँ पर भी हर बात का ख्याल रखिएगा। लास्ट में हम पुनः मेडिटेशन करते हैं, और थोड़ा 2 मिनट पहले आप परिचय देंगे फिर मेडिटेशन करेंगे। वैसे तो परिचय देने की क्या आवश्यकता है, नहीं राकेश भाई हा? मैंने तो ऐसे शॉर्ट में दे दिया, फिर भी दीदी आई हैं तो। लेकिन बस मॉर्निंग के और जो दिन भर के सत्र चले जरूर अटेंड कीजिए। सेवाधारी अगर बैठे होंगे तो सेवा पर विशेष अटेंशन देंगे।
ओम शांति। जैसे कि अभी हम सभी ने दीदी जी को सुना, बहुत अपनेपन का एहसास हुआ, उनकी वाणी में ही मधुरता है, परंतु फिर भी हम उनका जीवन परिचय तो जानना चाहेंगे ही, जानना चाहेंगे कि नहीं। तो दीदी जी, आप प्रभारी हैं ब्रह्म कुमारी टिकरापारा राजकिशोर नगर बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। दीदी जी आध्यात्मिक शिक्षिका के साथ साथ युवा मार्गदर्शिका, समाज सेविका, प्रेरक भी हैं। आध्यात्मिक शिक्षिका में दीदी जी ने जो यहाँ ब्रह्मा बाबा जो फर्स्ट लीडर है ब्रह्मा कुमारीज के, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के हमारी यहाँ की दादियां प्रकाशमणि दादी, जानकी दादी, रतन मोहनी दादी, गुलजार दादी, आपने सभी का, आपको सभी का सानिध्य और पालना प्राप्त है। सबकी शिक्षा को आपने जीवन में धारण किया है। इस प्रकार आप एक एजुकेशनल एक्सीलेंस में आप पोस्ट ग्रेजुएट हिंदी, पर्सनल मैनेजमेंट, म्यूजिक और मॉरल एजुकेशन में हैं। आपकी निपुणता हिंदी, मराठी, इंग्लिश, छत्तीसगढ़, चारों भाषाओं का आपको ज्ञान है। आप युवा मार्गदर्शिका में जीवन में रिश्तों में मधुरता लाने और एक बहुत अच्छी काउंसलर भी हैं, और आप सोशल मोटिवेशनल के रूप में समाज सेविका प्रेरक हैं। इसके द्वारा आप छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों में भी और मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सब जगह आप योग जागरण अभियान के द्वारा ग्राम्य जीवन में चेतना जागृत की आपने। रेलवे, एनटीपीसी, एसीसीएल, आकाशवाणी, जिला प्रशासन, जिला यातायात, अनेक स्कूल कॉलेजों में भी आपका विभिन्न विषयों पर वक्तव्य रहता है। आप अनेक अभियानों में जैसे अखिल भारतीय शिक्षा अभियान, ग्रीन दी अर्थ एंड क्लीन दी माइंड, अखिल भारतीय महिला सशक्तिकरण, योग जागरण, किसान सशक्तिकरण अभियान में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजन, अमृत महोत्सव, संकल्प अर्पा, वृक्षारोपण, ये सब अभियान में आप रही हैं। और बच्चों को संस्कारित करने के लिए आप 25 वर्षों से बाल संस्कार शिविर का भी आयोजन कर रही हैं। आपकी प्रमुख उपलब्धियां हैं, आप छत्तीसगढ़ योग आयोग की जो प्रथम महिला पूर्व सदस्य रही हैं। पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में आप शारीरिक के साथ मानसिक सशक्तिकरण के लिए योग व राजयोग मेडिटेशन का शंखनाद कर रही हैं। आपका विशेष सम्मान है वुमन्स 20 पतंजलि विश्वविद्यालय व महिला पतंजलि द्वारा योग नारी शक्ति सम्मान, ACCL द्वारा नारी रत्न से आप सम्मानित हैं, BNI संस्था द्वारा गिवर्स गेन अवार्ड से सम्मानित हैं, एवं युवा शक्ति जागरूकता के लिए भी आपको सम्मान प्राप्त है। ओम शांति। और भी दीदी जी का जो आप आध्यात्मिक ज्ञान सुन रहे हैं, तो ये इनके
दीदी जी का नहीं है, परमात्मा का।
हाँ, ये इनके माता पिता और परमात्मा तो हैं ही, इन्होंने गर्भ में ही वो संस्कार प्राप्त कर लिए, क्योंकि माता पिता ही शुरू से ही स्वामी सत्यानंद सरस्वती, बाबा रामदेव और इस प्रकार सभी गुरुओं का इनके जीवन में शिक्षा सानिध्य प्राप्त है। तो इन्होंने गर्भ में ही आध्यात्मिक शिक्षा को धारण कर लिया था, क्योंकि माता पिता ही शुरू से, ये ब्राह्मण परिवार मराठी से हैं, और दीदी जी हमारी बहुत अच्छी गीता क्लास भी कराती हैं। ओम शांति।
चलिए ओम शांति। हम लास्ट में 2 मिनट, आज जो हमने चिंतन सुना उसकी गहराई का अनुभव करते हैं। खुशी, प्रेम, आनंद, ये जो मुझ आत्मा के गुण हैं, इन गुणों को मुझे अपने दिनचर्या में स्थान देना है, क्योंकि ये आत्मा के मूलभूत गुण हैं। और सर्वशक्तिवान परमात्मा मेरे साथ हैं, तो दुनिया की कोई ताकत मुझसे मेरी शक्ति को छीन नहीं सकती, क्योंकि विश्व का नियंता, विश्व का पालनहार मेरे साथ है। इन 5 दिनों में मुझे बहुत कुछ शिव बाबा के घर से प्राप्त करना है, और फिर अपने स्थान पर जाकर, जो परमात्मा का ही स्थान है, क्योंकि मैं परमात्मा की हूँ, उस स्थान पर जाकर सुख, शांति, आनंद, प्रेम की छटा बिखेरनी है। मैं खुश नसीब आत्मा, मैं खुश नसीब आत्मा, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। शांति शांति शांति, ओम शांति ओम शांति ओम शांति।